رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره واعوانه والفائزين بلقاء الشريف والمستشهدين بين يديه بر محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے تو اس نورانی محفل میں میں تمام ان برادران کو، تمام ان حضار کو، حاضرین محفل کو جو انقلاب اسلامی سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے وابستہ ہیں اور کے قدم بہ قدم ساتھ چل رہے ہیں، مخالفتوں کے باوجود، تاریکیوں کے باوجود، وحشت کے باوجود، دنیا گرائی اور سیکولرزم کے باوجود، ان کو انقلاب اسلامی کی 36ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. برادر مبشر نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ ایک سیر تاریخی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک اور انداز سے شاید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر کوئی ابہام، کوئی کنفیوژن، کوئی سوال رہ گیا تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں جواب دیں گے آپ کو. یہ پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ تمام عزیزوں کو، دوستوں کو دین میں، انقلاب سے محبت میں، ہر چیز میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجبور ہوں کہ آپ کی پسند ناپسند کا خیال کیے بغیر اور اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ کہیں کوئی چیز آپ کو بری نہ لگ جائے، جو امانت کا میرے کندھوں پہ بوجھ ہے اس کا حق ادا کروں، اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر جو درست بات اور صحیح بات ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں. لہٰذا اگر کوئی بات آپ کو مختلف نظر آئے، متفاوت نظر آئے، تلخ نظر آئے، تند نظر آئے، تو بجائے اس کے کہ آپ فوراً اس کا انکار کر دیں، اس کو ایک دریچہ سمجھیے گا تاکہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں. غور و فکر کے بعد، توسل و تفکر کے بعد، دعا کے بعد اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو تمہارے دل میں اتر جائے اور ایک جو نہ اترے. جو دل میں اتر جائے اسے قبول کر لو، باقی کو رد کر دو. تو اگر آپ کے دل کو نہیں لگے گی تو آپ چھوڑ دیجئے گا اس بات کو. تجزیہ و تحلیل ایک شخص کی تھی، ہمیں نہیں سمجھ میں آئی، ہمیں نہیں پسند آئی اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن بہرحال باتیں ہیں کچھ مختلف اور تھوڑی سی تل. ایک بار درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. انقلاب اسلامی جب رونما ہوا تو اس وقت دنیا پاور کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے دو قطب میں تقسیم تھی، ایک رشیا اور ایک امریکہ. اس وقت یورپین یونین کا ایز سچ کوئی وجود نہیں تھا، یا کچھ ممالک یورپ کے رشیا کے ساتھ تھے، کچھ امریکہ کے ساتھ تھے. اصل جو دو بلاکس تھے وہ رشیا اینڈ امریکہ تھے. اور اس دور میں اسلام کی اگر کوئی ریپرزنٹیشن تھی واحد تو وہ سعودی حکومت تھی. یہ سلفی اور یہ وہابی، جن کو خلافت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے دنیا پر اور مسلمانوں پر مسلط کیا تھا، یہ تیزی کے ساتھ اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہے تھے ساری دنیا میں، اور یہ ایک طرح سے سول ریپرزنٹیٹو تھے اسلام کے پوری دنیا میں. آپ کو معلوم ہے شاید یا نہیں معلوم ہو کہ خلافت عثمانیہ تک کا جو زمانہ ہے اس میں جو اہل سنت رہے ہیں ساری دنیا میں، وہ بحیثیت مجموعی بہت خوش عقیدہ تھے. اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت، ان کے عقائد بہت اچھے تھے، ابھی بھی اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، لیکن بہرحال مسموم ہو چکے ہیں اس وہابیت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے. اب وہ اتنے زور و شور سے یا علی مدد نہیں کہتے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی سن تو نہیں لے گا اگر کہنا بھی ہوتا ہے تو. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، اس کی ایک دلیل دوں میں آپ کو. سعودیوں کے آنے کے بعد، سلفیوں کے آنے کے بعد جو خادمین حرمین شریفین کا ٹائٹل ہے، یعنی تولیت حرمین، حرمین کا انتظام و انصراف سنبھالنا، انہوں نے اپنے لیے کون سا منتخب کیا؟ خادم الحرمین شریفین. یہ ٹائٹل پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا خلافت عثمانیہ میں، اور اس سے پہلے یہ کہلاتا تھا شریف مکہ. और शरीफ़ मक्का का मतलब क्या था? मतलब ये था कि हर वो शख्स जो इंतज़ाम और इंसराम संभालना चाहता है हरमैन का, उसको शरीफ होना ज़रूरी है। यानी क्या? यानी उसका शजरा जो है वो लाजमी तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिलता हो, जिसका शजरा भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से जाके मिलता हो उसी को शरीफ का टाइटल दिया जाता था, और वही ये इस बात का हकदार समझा जाता था कि हरमैन की तौलियत और इंतज़ाम संभाल सके। बहरहाल उसमें लोगों ने चक्कर चलाए और अपना शजरा भी चेंज किया थे, सुफियानी कहलाए हाशमी, वो एक अलग इशू है, अगर मौका मिलेगा तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा आपसे। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि अहले बैत से जो मोहब्बत थी ओवरऑल तमाम मुसलमानों में, जिनकी अक्सरियत अहले सुन्नत थी, वो अहले बैत की मोहब्बत इतनी थी कि वो नहीं पसंद करते थे इस बात को कि कोई दुश्मन अहले बैत, हत्ता कि दुश्मन ना भी हो, शजरा उसका नहीं मिल रहा अहले बैत से, उसको नहीं देते थे इंतज़ाम हरमैन का। लेकिन जब इससे ये आए तो एक से बढ़कर एक नासिबी, एक से बढ़कर एक दुश्मन अहले बैत ये लोग छा गए, और यही एक तरह से ओवरऑल ऑफिशियल रिलीजन या रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम तो पूरी दुनिया में करार पाया। जो वेस्ट थे, आपको मालूम है वेस्ट जो थे वो उन्होंने चोट खाई हुई थी कलीसा से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, रेनेसांस के बाद कलीसा कोई भी ये साइंस की, टेक्नोलॉजी की जिद्दत की बात किया करते थे, कलीसा उनका सर उड़ा दिया करता था गैलोटिन के ज़रिए से। कलीसा ने, चर्च ने तफ्तीश अकायद की, दादगाहें या समझ लीजिए कि रिसर्च सेंटर नहीं, दादगाह यानी जहाँ पे कजावत होती है, कोर्ट्स, जी हाँ शुक्रिया, कोर्ट्स कायम किए हुए थे, और वो इस बात को यकीनी बनाते थे कि कोई भी बाइबल से हटकर, वो तहरीफ शुदा बाइबल से हटकर कोई बात ना करने पाए, जबकि उससे पहले का जो मुसलमानों का दौर था वो साइंस और टेक्नोलॉजी में और उलूम में बहुत ही हाई फाई था। इस पर बात हो चुकी है माजी में, मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अभी इशारतन आगे बढ़ रहा हूँ, एक ओवरऑल पिक्चर आपकी खिदमत में देना चाह रहा हूँ ताकि बात आगे बढ़ा सकूँ। वो सिर्फ कलीसा के और चर्च के दुश्मन नहीं थे, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर यूरोपियंस की, बल्कि वो बहसे थे मजमू दीन के दुश्मन थे, मजहब के दुश्मन थे और ख़ुदा के दुश्मन थे। क्यों? इसलिए कि चर्च ने उनके ऊपर जो भी मुसीबतें डाली थीं वो खुदा के नाम पर थी, मज़हब के नाम पर थी, तो उनके लिए ज़ाहिर है जब वो ईसाइत के ही दुश्मन हो गए तो इस्लाम को किस खाते में लाते। तो अमरीकियों का और यूरोपियंस का जो वो था पर्सपेक्टिव था दीन के हवाले से वो ये था। रशियंस क्या थे? रशियंस कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, और ज़माने में हमें याद है यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़ा करते थे और डिस्कशन हुआ करती थी लेफ्टिस्ट लोगों के साथ और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन और फलां और फलां, ये अब सही नहीं है, सही है, ठीक है, शुक्रिया। तो उनका कहना क्या होता था? खुदा कहाँ है? खुदा जब तक मेरे छुरी के नीचे नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा। ये हमारी उनसे जो गुफ्तगू हुआ करती थी सोशलिस्ट लोगों से वो इस टाइप की होती थी। ये रेज़र का नाम ओकहैम रेज़र अगर आपने पढ़ा हो ये वहाँ से बात आई है, छुरी के नीचे आए तो मानेंगे महसूसात के इसमें छुरी से तब मानेंगे वरना हम नहीं मानेंगे, यानी तमाम तर मानवियात, तमाम तर गैब, उसका इनकार, ना कोई फरिश्ता, ना कोई खुदा, ना कोई क़यामत, ना कोई रोज़े जज़ा, ना कोई बाद की ज़िंदगी, जो है वो यही है और यहीं ख़त्म हो जाना है। वो कहते थे कि मज़हब जो है वो भंग है, अफीम है, और जो मज़हबी लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, ना ख़ुद कुछ करते हैं ना ख़ुद किसी को करने देते हैं, लिहाजा उधर से भी मज़हब कटता था और इधर से भी कटता था, और वाहिद जो बचता था सो कॉल्ड इस्लाम वो सल्फियों के हाथ में था या उन जैसों के हाथ में था। तो ये खिलाफत उस्मानिया के बाद से जो सूरत आल इस्लाम की पैदा हो गई थी, अगर वो जारी रहती इसी तरह से और कोई इसको चैलेंज करने वाला नहीं होता, तो ख़ुद इस्लाम नाब मोहम्मदी, खालिस इस्लाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम का तालीम दिया हुआ इस्लाम कुर्रे अर्ज से आहिस्ता आहिस्ता मिट जाता, नाबूद हो जाता। एहदाब की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि इमाम खुमैनी ने किया क्या, मिट जाता। आप खुद समझ लीजिए कि सलफियों का इस्लाम है, वहाबियों का जो इस्लाम है ये भी कोई इस्लाम है? इमाम खुमैनी फरमाते हैं خرافات کا پلندہ ہے. یہ بھی شرک وہ بھی شرک, یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت, یا علی مدد نہیں کہو, فلاں نہیں کہو, یا رسول اللہ نہیں کہو, یہ بھی شرک ہے وہ بھی. ابن تیمیہ نے, ابن تیمیہ اپنے زمانے میں جہاں بھی جاتا تھا, جس گاؤں دیہات میں جاتا تھا تبلیغ کرنے میں, وہاں سے پٹ کے نکلتا تھا, لوگ مارتے تھے اس کو. میں نے عرض کیا نا, سنی خوش عقیدہ تھے اور نہیں مانتے تھے وہ, لیکن انگریزوں نے ان لوگوں کو, ان کی تعلیمات کو دوبارہ سے ریوائیو کیا, ان وہابیوں کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا, اور اسلام کی جو چہرہ ہے وہ اتنا مست کیا کہ اصل اسلام جو ہے وہ غائب ہو گیا تقریبا. ابھی بھی آپ مجھے بتائیے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انقلاب اسلامی ختم ہو جائے, نہ محرموں کے ہاتھ میں چلا جائے, نہ اہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے, قوم کا جو حوضہ ہے وہ ختم ہو جائے, نجف کا جو حوضہ ہے وہ نابود ہو جائے, تو پھر کون سا اسلام بچتا ہے ہمارے پاس؟ کیا اموی اسلام کے علاوہ کوئی اسلام بچے گا ہمارے پاس؟ کہ اہل بیت کا اسلام کوئی اور سورس ہمارے پاس ہے؟ انڈیا اور پاکستان بلکہ تمام اسلامی ممالک میں جو اسلام آتا ہے وہ نجف اور قم سے ہی تو آتا ہے نا. پہلے نجف مین مرکز تھا, اب قم الحمدللہ مین مرکز. لیکن اگر یہ مراکز ختم ہو جائیں ہمارے خدا نہ خواستہ, اور اسلام کی ریپرزنٹیشن سلفیوں جیسوں کے ہاتھ میں آ جائے, تو کیا اصل اسلام باقی رہے گا؟ یا ایک کیریکیچر ہوگا اسلام کا, یا پھر اسلام کے دشمن ہوں گے وہ, جس طرح سے چاہیں گے کھیلیں گے اسلام کے ساتھ, اور نابود ہو جائے گا وہ اسلام ہر جگہ سے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ایک الہامی اور ایک معجزہ آسا تحریک کے ذریعے اس اسلام کو ریوائیو کیا ہے, دوبارہ سے واپس لے کے آئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اس ملک سے اس ملک جلا وطن کیے جاتے تھے, کبھی یہاں تو کبھی وہاں, کبھی ترکی تو کبھی مڈل ایسٹ کے کسی ملک, کبھی فرانس مثلا, اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی, تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا جو آزاد پانی ہے نا, آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل واٹرز میں کسی ایک کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہوتی, کوئی ایک باؤنڈری نہیں ہوتی ہے, سچ فری ایریا ہے سارا. وہ فرماتے تھے کہ ہمیں آزاد پانیوں میں ایک جہاز مل جائے, چھوٹا سا کشتی مل جائے, وہاں پر ہم بیٹھ کر ساری زندگی گزار دیں گے, اور وہاں سے اسلام ناب محمدی منتشر کریں گے, نشر کریں گے ساری دنیا میں, ہمارے لیے کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصل اسلام جو ہے وہ نابود ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ہم اس لحاظ سے امام خمینی کی تحریک کو دیکھیں کہ انہوں نے ایران میں شاہ ایران اور ان جیسوں کے مظالم سے تنگ آ کر اور لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے ایک نیشنلسٹ موومنٹ چلائی جس کے اوپر مذہب کا رنگ تھا, تو یہ ایک زیادتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے امام خمینی کے اصل اہداف کو نہیں سمجھا اور اس کو بہت محدود کر دیا. ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ شاہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانا اور وہاں پہ عدل و عدالت کا نظام قائم کرنا اور وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانا, یہ بھی اہداف ہے, لیکن یہ جزئی اور فرعی اہداف ہے. اصل ہدف کیا ہے؟ اصل اسلام کو بچا لینا مکتب کے طور پہ, اور وہ اس بات کے لیے بھی راضی تھے پورا ملک نہ بھی ملے ہمیں, ایک کشتی جہاز مل جائے, اصل پیغام ہم وہاں سے دیتے رہیں گے تاکہ ایک باؤنڈری محفوظ رہے غلط اسلام کی تشریح میں اور صحیح اسلام کی تشریح میں. اس بات کو اور آگے بڑھاؤں اور ری انفورس کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے لیکن جن دوستوں نے سنی ان کے لیے بھی تذکر کے لیے بری نہیں ہے, ایک بار درود پڑھ دیے محمد والے محمد. جب نفل و شاتوں میں فرانس کے اس قصبے میں چھوٹے سے ایک شہر میں جہاں پہ ان کو جلاوطن رکھا گیا, کچھ عرصے آپ نے گزارا ہے, امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی ملاقات ہوتی ہے شہید مہدی عراقی سے, جو ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں, اس نہضت میں انقلابی تحریک کے ساتھیوں میں سے ہیں, شہید نواب صفوی کی مانند. جب ملاقات ہوتی ہے تو شہید مہدی عراقی بھی انہی اہداف کا ذکر کرتے ہیں امام خمینی سے. اسے انقلاب تو نہیں آیا ظاہر ہے, جلا وطن ہے, لیکن ایک امید سی پیدا ہو گئی ہے کہ شاید شاہ چلا جائے اور شاید حکومت ہمارے پاس آ جائے, یعنی اسلامی نہضت کے پاس آ جائے. شہید مہدی عراقی کہتے ہیں آغا जो कुछ आप कर रहे हैं, जो तहरीक आप चला रहे हैं, जो कोशिशें आपकी हैं, अगर ये कामयाब हो जाएं तो कितना अच्छा हो। और फिर आगे ख़ुद तशरीह करते हैं उसकी। यानी नंबर एक, पहली बात तो ये कि सावाक के जुल्म व सितम से तमाम लोगों को नजात मिल जाएगी। सावाक का नाम इस ज़माने में ऐसा था कि नाम सुनते लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो घर से गायब हुआ वो गया, अब नहीं आता वापस। जो सावाक के शिकंजे में गया उसके या तो नाखून उखड़े हुए होंगे या हड्डियाँ टूटी हुई होंगी या उसका किसी और अंदाज से कीमा बना देंगे वो। सावाक इंतहाई दहशत का नाम था। सावाक के जुल्म से तुम से नजात मिल जाए और लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो पुरासाइश हो जाए, बेहतर हो जाए इतनी सख्तियों में। मैंने अर्ज़ किया है दोस्तों की खिदमत में कि मुझे तौफीक हासिल हुई है कि 77 अगस्त में मैं ईरान का मैंने सफ़र किया था। छोटा था, यंग था काफ़ी, 7वीं 8वीं क्लास में रहूँगा मेरा ख्याल है, और अपनी आँखों से शाह का ईरान देख के आया हूँ, वहाँ की बेबंदोबारी देख के आया हूँ, वहाँ के मिनी स्कर्ट्स और कैबरेज और डांसिंग क्लब, अंदर से नहीं बाहर से देख के आया हूँ, वहाँ के मिनी स्कर्ट्स, वहाँ की सिखों की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें और सिखों की बड़ी बड़ी शराब की दुकानें, वो सब जगमगाता हुआ तहरान का बाजार बुज़ुर्ग भी देखा है और फटीचर हालों में वहाँ के गांव देहात भी देखे। हम लोग चूँकि स्काउट्स थे लिहाजा कम्युनिटी सर्विस की हमारा एक काम टास्क होता था जो हमें करना था वहाँ पे। गांव देहात में जाके किसी जगह गए स्कूल, वहाँ जाके आपने पेंट किया है स्कूल पे और सड़क साफ़ की हो, ये स्काउटिंग के जो काम होते हैं ना उसमें हमें गाँव देहात ले जाते थे। वो ना कोई सड़क सलामत है, ना कोई घर सही है, कच्चे मकानात हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं बिजली है कहीं नहीं है, कहीं पानी का मसला है कहीं कुछ। वो सब अपनी आंखों से देखा, शहर के जगमगाते हुए हालात वो देखे। बहरहाल तो तबकाती तफावत, मेरी इराकी कहते हैं ये सब ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़ाहिर है जब मुसलमानों इनकलाबियों के हाथ में आएंगे तब वो इस हालात में थोड़ी रहने देंगे, वो तो फैसिलिटेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पिसे हुए तबके को, और जो खाने पीने वाले और हड़प कर जाने वाले उनसे छीन के और तकसीम करेंगे आदिलाना तकसीम। ये दो बातें जब शहीद मेहदी इराकी ने पेश की ना, अगर मैं और आप भी होते ना उनकी जगह तो तवक्को हमारी क्या थी कि मौ खुमैनी फरमाएंगे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम यही तो चाहते हैं। लेकिन अजीब बात है, मौ खुमैनी फरमाते हैं हाँ ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। धचका लगा मेहदी इराकी को। ये वो शख्स है जो सावाक के शिकंजे झेल चुका है इस तहरीक में इमाम खुमैनी के कदम ब कदम उनके पीछे चलते हुए। उसके उन शख्सियत के, इनकलाबी शख्सियत के अहदाफ क्या हैं और इमाम खुमैनी के अहदाफ देखें। फरमाते कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे इराकी कहते हैं अगर क्या मतलब है कोई हर्ज नहीं है, फिर आप क्या चाहते हैं? आप फरमाते हैं हमें तीन जिम्मेदारियाँ अता की गई हैं, हमें तीन मामूरियत या तीन जिम्मेदारियाँ अता की गई हैं। समझने वाले खुद समझ लें, जैसे मुबशिर भाई ने अभी फरमाया कि जब आयतुल्ला तालिकानी से इमाम खुमैनी ये फरमाते हैं कि अगर ये हुक्म मेरी तरफ से ना हो, तो जब वो अपने करीबी लोगों से फरमा रहे हैं कि हमें तीन जिम्मेदारियाँ अता की हैं तो किससे, किसने अता की हैं? जिनके वो नायब हैं जाहिर है, और किससे लेंगे वो जिम्मेदारियाँ, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या जिम्मेदारी हैं? पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमें शाह की हुकूमत का खात्मा करना है। दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम करना है। और तीसरी ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि परचम को साहिब परचम के हवाले करना है। इस वाक़े को उस वक्त ही मेहदी इराकी ने पूछा था आगा क्या आप हवाले करेंगे परचम को, तो आप उस वक्त पहले खामोश हो गए थे, बाद में जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया उन्होंने फरमाया नहीं मैं नहीं, मेरे बात कोई और है। तफसील बताई या नहीं बताई मुझे नहीं पता, शायद बताई हो। बाद में जब इनकलाब आ गया है, शाह चला गया, रेफरेंडम हुआ और लोगों ने कह दिया हम इस्लामी निज़ाम के हक़ में हम राय दे रहे हैं, 98% के करीब लोगों ने कह दिया हाँ इस्लामी निज़ाम चाहिए, कायम हो गया इस्लामी निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसके बारे में इमाम खुमैनी फरमाते हैं इन्फिजार नूर था, एक नूर का झमाका था, एक धमाका था अज़ीम शान जो इनकलाब की सूरत में रूनुमा हुआ, खुदा की अजीम नेमत थी। वो तो इस बात पर राज़ी थे कि हम कोशिश करते रहेंगे और चाहे हमें एक जहाज़ के ऊपर ही जगह मिले वहाँ से अपने पैगाम नशर करते रहेंगे, लेकिन खुदा ने करम किया, वो जो कुर्बानियाँ दी गई थी, जो खून बहाया गया था पाक, उसका खुदा ने समर दिया और इनकलाब अता किया। बहरहाल निज़ाम कायम हो गया। एक ग्रुप फिर करीबी इनकलाबियों का जो तकरीबन साथ साथ थे मेरी इराकी और नवाब सफ़ी जैसे लोगों के साथ थे या उसके बाद आए थे, उनको फिर एक सस्पेंस हुआ कि ये बात सुनी है हमने मेरी इराकी के हवाले से, चलते हैं इमाम खुमैनी से कन्फर्म करते हैं। उस कन्फर्मेशन के अलावा कुछ और भी था उनके जहन में, वो गए वहाँ पे और जाके इसरार किया इमाम खुमैनी से कि आगा आपने ऐसी बात कही थी मेरी इराकी से इनकलाब से पहले नौफल शातों में। आपने फरमाया हाँ, मैंने कहा। फिर अगला सवाल जो असल मकसद था उनका कन्फर्मेशन से ज़्यादा कि देखिए पहला काम हो गया, शाह चला गया, दूसरा काम हो गया निज़ाम इस्लामी या कायम हो गया, अब क्या आप परचम को साहिब परचम के हवाले करेंगे? आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं, मेरे बात कोई और। और ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है क्लोज सेशन में इमाम खुमैनी के पास कि आयतुल्ला सैयद अहमद फेहरी जंजानी जैसे लोग भी वो फरमाते हैं, उनका भी इंतकाल हो गया, कि हमें इमाम खुमैनी ने सारी तफसीलात बता दी थी। और जब लोग उनके पास परेशान हाल और डिप्रेस्ड एक तरह से आए थे सिपा के और उसके बसीज के, क्या आगा हम तो इंतज़ार कर रहे थे, हम सारे ज़िंदगी हमने सारी जंग के दौरान हमने नारे क्या लगाए, खुदाया खुदाया था इनकलाब मेहदी हत्ता किनारे मेहदी खुमैनी रा निगहदार, खुदा सलामत रखे इमाम खुमैनी को इनकलाब मेहदी तक हत्ता उसके बाद भी, लेकिन इमाम खुमैनी का तो इंतकाल हो गया। अब वो वाली बातें क्लोज सेशन की थी ना, उस वक्त तक थी, ओपनली सामने नहीं आई थी। सैयद अहमद फेहरी फरमाते हैं कि नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हज़रत इमाम ने हमने पहले कह दिया था कि उनके हाथों नहीं जाएगा परचम किसी और के, उनके बाद कोई और। तफसील उन्होंने भी बता दी थी उनको, लेकिन बेशर्ते हा वो शुरूते हा कि आम नहीं करनी ये बात, ख़ास लोगों को पहले दिन से पता है और अभी तक पता है कौन है और क्या है। आप देख रहे हैं ये अहदाफ। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल और आपसे अर्ज करूँ ताकि अंदाज़ा हो कि असल हदफ, देखिए किसी भी काम और किसी भी तहरीक का हदफ बयान करने का सबसे ज़्यादा हक उसको होता है जो बानी हो उस तहरीक का, है या नहीं? यानी इमाम खुमैनी ख़ुद अपने अल्फाज से अगर बयान फरमाएंगे ना, हमने इसलिए इनकलाब बरपा किया, वो है असल हदफ। अगर कोई उससे आगाह ना हो, उनके क्लोज सेशन से दूर रहा हो या इस तक उसकी रसाई इन ख्यालात तक ना हुई हो, तो वो अपने ख्याल में कोशिश कर रहे हैं अदाब बयान करने की, लेकिन शायद वो जुजी और फरी और सानवी और तीसरे और चौथे दर्जे के अदाब बयान कर रहा हो, असल अदाब बयान ना कर रहा हो। एक वाक़या पेश आया, ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं ईरान में इनकलाब के दौरान। आयतुल्ला काजिम शरीयत मदारी, जो यहाँ पे आयतुल्ला शरीयत मदार के नाम से पहचाने जाते थे इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, और ये सब हमारे सामने की बातें हैं, मतलब हमने देखी पढ़ी नहीं है कहीं या वीडियो नहीं देखी उसकी, खुद हमने बरता है उसको। शहीद मदार साहब के साथ एक वाक़या क्या पेश आया कि जब इनकलाब आ गया था तो वो इस विलायत फ़कीह की हुकूमत के मुखालिफ थे। अच्छा, इस विलायत फ़कीह की हुकूमत की मुखालफत मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ उलमाए कराम की तरफ से रही है। तल्ख बात करने जा रहा हूँ ताकि आप गहराई में उतरें और मसाइल को समझने की कोशिश करें और किसी ख्वाब खरगोश में आपको ना रखा जाए कि जब चीज़ें सामने आएँ तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाए और आप पूरे के पूरे इनकलाब से मुतनफ़िर हो जाएं। हालात इस नहज पे अगर नहीं आ गए होते और हम बकौल रहबर मौज़म के उस तारीखी टर्निंग पॉइंट के ऊपर नहीं आ गए होते तो शायद ये बातें मैं नहीं करता आपसे, और जिस तरह से अभी तक चुप रहते, खामोश रहते और चलने देते सब। मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इख्तलाफ मुझसे कर सकते हैं, इसमें रिसर्च स्टडी अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। जिन लोगों ने सबसे पहले इमाम खुमैनी की नहजत की इनकलाबी अप्रोच की मुखालफत की है, उनमें से एक कौन है? मैंने कहा ना कि मुखालफत की नौइयतें मुख्तलिफ हैं, एक इख्तलाफ राय होता है और एक इख्तलाफ होता है दुश्मनी की बुनियाद पर। मैं जिस मुखालफत की बात कर रहा हूँ वो इख्तलाफ राय है, दुश्मनी नहीं है। वो अफसोस की बात है आयतुल्लाह उज़्मा ब्रुजर्दी ने, हत्ता कि शहीद नवाब सफ़वी के रास्ते में वो इनकलाबी थे, उनको फंडिंग देने में उनका सपोर्ट करने में एक तरह से आयतुल्लाह उज़्मा ब्रुजर्दी ने बायकॉट कर दिया था। क्यों? इसलिए कि आयतुल्लाह उज़्मा ब्रुजर्दी इस बात के कायल थे कि अगर हम हुकूमत में आ जाते हैं, इनकलाब कर लेते हैं, शाह को हटा देते हैं, तो हमारे उलमा में इतना दम नहीं है कि इस हुकूमत को अपने हाथ में रख सकें और चला सकें। और वो अपनी इस फिक्र में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा मुस्तहकम थे कि वो शाह ईरान को मशवरा देते हैं कि थोड़ा सा मजहबी बन के भी दिखा दिया करो, जाहिर कर दिया करो, ताकि हम लोगों को मुतमईन कर सकें कि तुम्हारी हुकूमत मजहबी है। ये वो दौर है। मऊ खुमैनी ने उनके ख़िलाफ़ कभी कोई क़याम नहीं किया, कुछ नहीं किया। बशीर भाई ने फरमाया है भी ऐसे कि हमेशा एहतराम किया है उनका, उनकी मरजियत में खुद पीछे रहे, आगे नहीं आए, कोई इस तरह क्लैश की सूरत नहीं पैदा होने दी कि मरजियत पे कोई हर्फ आए या हौजे पे कोई बात आए। लेकिन वो सोच आगे बढ़ी। आयतुल्लाह अल उज़्मा काज़िम बरूजर्दी जो हैं वो मसलन हुसैन बरूजर्दी जो हैं वो इख्तलाफ राय की हद तक हैं, ठीक है, आपकी राय ये है, उनकी राय वो है। और ज़ाहिर जो कुछ इमाम खुमैनी करने जा रहे थे सवा की मौजूदगी में, अमेरिका की पुष्ट पनाही की मौजूदगी में और उलमा के हालात, आयतुल्लाह बरूजर्दी से ज़्यादा कौन जानता होगा कि भाई इनमें किस में कितना दम है किस में नहीं है। शायद इमाम खुमैनी ख़ुद पूरी तरह से मुतमईन ना हो कि वाकई ये कामयाब होगा भाई या नहीं होगा। ठीक है, इख्तलाफ राय की हद तक मैं एहतराम करते हैं उनकी नज़र का। उन्होंने कोई ऐसे एस सच रोड़े नहीं अटकाए, वो मुखालफत नहीं की इमाम खुमैनी की, कम अज़ कम शहीद नवाब सफ़ी वगैरह की हद तक तो ठीक है, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आगे जाकर आयतुल्लाह काज़िम शरीयत मदारी का जो मसला पेश आया वो ये कि वो मुखालिफ थे विलायत फ़कीह के और तकरीबन अहल सुन्नत वाले उन ख्यालात के हामिल थे, बहुत सारे दीगर बुजुर्गान के मानेंद कि भाई सियासत जो है छी 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 गंदी चीज़ है, उलमा का काम सियासत का नहीं है, वो बस ऊपर से बैठ के बता दें कि ये सही है ये गलत है, ये दुरुस्त है ये दुरुस्त नहीं है, वो खुद दाखिल हो जाएं सियासत के अंदर, नहीं 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 तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन और सियासत दो अलग अलग चीज़ें। जब वली फ़कीह बने उनको शायद सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि अगर विलायत फ़कीह चलनी ही है तो वो खुद क्यों ना बन जाए। उनको अप्रोच किया अमेरिकन कौंसलेट ने, अमेरिकन एम्बेसी ने, अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा आया उनके पास और कहा कि आप हमारा साथ दें ताकि शाह जैसी कोई हुकूमत वापस आ जाए या मजहबी हुकूमत आ जाए, इन खुमैनी साहब से हमारी जान छूट गए, ये बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं हमें। आयतुल्लाह काज़िम शरीयत मदारी साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मुझे फंडिंग चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी। अमेरिकन उनको सपोर्ट भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं हर लिहाज से। आयतुल्लाह रेशहरी वज़ीर इत्तला'आत हैं, वो इमाम खुमैनी की खिदमत में हाज़िर होते हैं और आके बयान फरमाते हैं कि आगे काज़िम शरीयत मदारी ने ये बात कही है कि मैं इस हुकूमत विलायत फ़कीह को गिरा कर रहूँगा, ये वादा किया है उन लोगों से, मैं इसको गिरा कर रहूँगा। इमाम खुमैनी ने जब ये सुना आयतुल्लाह रेशहरी की बात, सर झुका लिया थोड़ी देर, फिर सर उठा के कहने लगे कि ये आगायून ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमें ज़मानत दी गई है कि हमारा इनकलाब इमाम ज़माना के इनकलाब से मुत्तसिल होकर रहेगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। उस तीन जिम्मेदारियों की बात से बात शुरू कीजिए और इस ज़मानत की बात से शुरू कीजिए आप कि इस विलायत फ़कीह के निज़ाम को मुत्तसिल होना है ज़हूर इमाम ज़माना से। दूसरे अल्फाज में ये इमाम ज़माना के इनकलाब की एक तमहीद है, उसका मुकदमा है, असल हदफ ये है इस निज़ाम इनकलाब इस्लामी का। बाकी बातें बकौल इमाम खुमैनी की हाँ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर आप इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करके देखें और सिर्फ पहली दो मामूरियत या जिम्मेदारियों को देखें, तीसरी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि शाह भी गया हुकूमत भी आ गई हमारे पास और अब इस हुकूमत को चलना है, अगर इमाम ज़माना को आना होगा तो आ जाएंगे, तो माजरत के साथ ये सारा का सारा दीन का एक सेकुलर पर्सपेक्टिव है, ये वो पर्सपेक्टिव नहीं है जो इमाम खुमैनी लेके आए थे। और इसीलिए शायद इमाम खुमैनी ने ताकीद करके फरमाया था न गुजारीत इनकलाब या निज़ाम बेदस्त ना महरमान भी उफ्ताद, इनकलाब या निज़ाम को ना महरमों के हाथ में नहीं जाने देना। और यही वजह है कि रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया था कि अहमदी निजात की नज़र मेरी नज़र से नज़दीक है और अहमदी निजात ने इनकलाब की ट्रेन को उसकी रेल पर पटरी पर पलटा दिया। माजरत के साथ, हाशमी रफसंजानी साहब का 8 साला दौर 2 मरतबा और मोहम्मद खातमी का 2 मरतबा, ये 16 साल ने कतार इनकलाब को उसकी पटरी से उतार दिया था। ज़िम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है, रिसर्च है, मालूम करना चाहें मालूम कर लें। जब किसी महफिल में मोहम्मद खातमी साहब साबिक सदर तकरीर फरमा रहे थे और किसी ने नारा लगाया मर्ग बर अहमदी नजाद, तो उस वक्त उन्होंने लोगों को रोक कर कहा नहीं, किसी शख्स को आप मुर्दाबाद नहीं कहें, मर्ग बर नहीं कहें, ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, ये आप कह सकते हैं मर्ग बर तफक्कुर अहमदी नजाद। मेरा ईमान है कि तफक्कुर अहमद निजात का खुलासा क्या है, अल्लाहुम्मा अज्जल वलिये कल फरज, यानी वो तीसरी जिम्मेदारी, मौजूदा हुकूमत भी कंटिन्यूएशन है हाशमी रफसंजानी का और मोहम्मद खातमी का, और इन्होंने अहमद निजात की मूवमेंट को जो रोका है, ब्लॉक किया है, एक शाहकार जन्म देके जो प्रोपेगेंडे का और नफ्सियाती उसका एक शाहकार था। आपको मालूम है वो बात शुरू कहाँ से हुई थी कि लोग अभी भी बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि अहमद निजात जो है वह रहबर के मुखालिफ हैं। बात शुरू कहाँ से हुई थी, वीडियो मौजूद है, शमून पेरेस इसराइली प्रेसिडेंट 2011 में कहता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए ईरान के अंदर कि अहमदी निजात के साथ रहना माया नंग हो जाए, शर्मिंदगी बन जाए। उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, बहुत सारे ऐसे दुश्मन जो पहले ही दुश्मन है विलायत फकीह के, और बहुत सारे बेवकूफ़ हजरात जिनकी तादाद कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आंख बंद करके सारे वो जो हैं प्रोपेगेंडे वो लेना शुरू किए, कभी मशाई तो कभी रहीमी तो कभी कोई, कभी कारदान, अहमद निजात के इर्द करीब तरीन लोगों को एक के बाद एक हिट करना शुरू किया, ब्लैक पेंट करना शुरू किया। यहाँ तक अहमद निजात चाहते थे इस्फंदियार रहीम मशाई साहब आ जाएं उनके बाद, इस तरह से उनको ब्लैक पेंट किया कि जैसे कोई मतलब काला चोर हो। मैं अपने दोस्तों से उस वक्त भी कहता था और अभी भी कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आँख कान बंद करके इस इनकलाब का साथ क्यों दे रहे हो भाई, जिसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो, मुफ्त मुफ्त जान कुर्बान कर दोगे, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए अंदर हो क्या रहा है, तो महरम इनकलाब नहीं बनना चाहते या कोई कारोबार बिजनेस बना लिया है तुमने खुदा ना खास्ता, कि कोई भी वहां पे आए कोई भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, रहबर हो या कादिम शरीयत मदारी जैसा कोई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? नहीं, हम तो खुद भी महरम इनकलाब है इंशाल्लाह, और हम नहीं चाहेंगे कि ना महरम इनकलाब के हाथ में कोई चीज जाए। मैंने रिसर्च की है, मैंने स्टडी की है, मैंने पढ़ा है डिटेल में जाके, खुदा ने तौफीक दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिन तकरीरों के टोटे बीच बीच में से निकाल के इस्फंदियार रहीम मशाई साहब के ईरान के मीडिया ने बम्बार्डमेंट की है, और जिनके ज़रिए से उनको मुनहरफ और पता नहीं फ्री मेसन और हुज्जतिया और पता नहीं मुर्ताज और पता नहीं क्या क्या साबित किया है, वो तकरीबन सारी तकरीरें मेरे पास मौजूद हैं कम्प्लीट, ईरान में नहीं मिलेंगी आपको, मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा है मैंने, स्टडी किया, खुदा गवाह है मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि रहीम मशाई साहब के ख्यालात एग्जैक्टली वही हैं जो इमाम खुमैनी के ख्यालात हैं, जो रहबर मौज़म के ख्यालात हैं। और अगर इनके ऊपर ये मुसीबत लाई गई है तो वो उस ग्रुप की तरफ से आई है हौजे में और सिपा से और फलां जगह से, कि जो तकरीबन काजिम शरीयत मदारी जैसी सोच के हामिल हैं, मुंतजरी जैसी सोच के हामिल हैं, जो इस तीसरी मामूरियत या जिम्मेदारी को खुराफात और माली खूलिया समझते हैं, नहीं मानते, वो कहते इमाम को आना होगा तो आएगा, आ जाएंगे आप, उससे क्या, आप अपना काम करें, अपने आप को बनाएं और संवारें और ये करें और वो करें, दे डोंट बिलीव इट। वो कहते हैं कि जब इमाम जमाने की वो बात आएगी तो हम उसे पहले कुरान पे परखेंगे, यानी इमाम जमाना को एक तरह से कुरान पे पहले परखेंगे, मान अगर पूरे उतरे तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, ये हसबुना किताब अल्लाह ये नहीं है क्या, किताब काफ़ी है तुम्हारे लिए, तुमने कनेक्शन बनाया ही नहीं अपना। और जिन बसीजियों ने कनेक्शन बनाया था दिफाए मुकद्दस के दौरान और शहीद हो गए थे 18 साल 17 साल 14 साल और 21 साल के जवान या जहरा या हुसैन कहते हुए, और साहिब करामत थे और ऐसे साहिब करामत थे वो नौजवान, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद कि जिनके बारे में शहीद मेहराब आयतुल्ला मदनी फरमाते हैं कि जो नौजवान मेरे सामने बैठा हुआ है मैं रश करता हूं इसके ऊपर कि इसने एक शब्द में हजार शब्दों का फासला तय किया है मानवियात में। ये इमाम खुमैनी के हाथों का परवरदा है, तरबियत याफ्ता है। ऐसे नौजवानों के बारे में जनाब नातिक नूरी साहब फरमाते हैं कि वो नौजवान जो इतने अरसे वहाँ दूर थे और अपने घरों से और प्रेशर में थे और खौफ में थे और तन्हाई में थे, नफसियाती मर्ज का शिकार हो गए, माली खुलिया का शिकार हो गए। किसी को इमाम ज़माना नज़र आने लगे, किसी को कुछ, किसी को कोई बशारत होने लगी। ये लोग इन सारे मामलात को, मसाइल को सेकुलर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, खुराफात और माली खुलिया समझते हैं। एग्जैक्टली यही पर्सपेक्टिव मुंतजरी का था। वीडियोस मौजूद हैं, मैं कुछ ढकी छुपी अंदर की बात तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं वली फकी का इससे क्या काम कि वो जाके खुद मदाखलत करे। वली फकी को तो साइड पे बैठकर सिर्फ बताना चाहिए, नहीं तकरीबन मलका एलिजाबेथ वाला रोल देना चाहते हैं वली फकी को, तशरीफाती रस्मी और बस। और इस बात के शिद्दत से मुखालिफ हैं कि कोई इमाम असर से राबता कायम कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया में भी इनका ज़ोर है, हौजे में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे काफ़ी इनका ज़ोर है। लिहाजा नतीजा क्या हुआ, अलामात और अलाइम ज़हूर के हवाले से भी इन्होंने वही हरकत की, मजाक उड़ाया, ठंडा पानी डाला, लोगों को मायूस किया। 2000 के करीब रवायात हैं इमाम ज़माना के इनकलाब से मुतालिक, जिनमें से 800 से ज़्यादा सिर्फ निशानियों पर मबनी हैं। इनको उनमें से एक भी सही नज़र नहीं आती, ये ज़ईफ़ है, वो जाली है, ये मखदूश है, इसका रावी ऐसा है, उसका वो ऐसा है। और अलामात के चक्कर में नहीं पड़ो तुम, बस अपने आप को बनाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और ज़हूर नहीं हुआ तो मायूस हो जाओगे। क्या पागलपने की बात है, तुम ज़्यादा जानते हो या अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़्यादा जानते थे? जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने मसल किसी ने, जब आपने सुफियानी के बारे में, सुफियानी यकीनी निशानियों में से एक है और उसका खुरूज के हम बहुत नज़दीक हैं इस वक्त इंशाल्लाह, उसके बारे में आपने बयान फरमाया, सामने वालों ने पूछा मौला ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नाम कैसा होगा मसलन, जवाब में इमाम ने तफसील से और चीज़ें बताई। वो जो पूछते जा रहे हैं इमाम बताते जा रहे हैं, इमाम ने तो नहीं फरमाया तुम्हें इससे क्या, तुम तो रहोगे भी नहीं उस वक्त, हाँ, और तुम अलामतों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तुम तो खुद साजी करो बस, जब इमाम को आना होगा तो आ जाएंगे। आइमा ने क्यों बताया हमें, क्यों बताया हमें? मैं एक मिसाल अर्ज़ करूं, मैंने जो माह रमज़ान में गुफ्तगू की थी, बाज़ दोस्तों को बहुत बुरा लगा था और बाज़ हलकों से मैं अभी भी ब्लैक लिस्ट हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी मैं अदा करूँगा, चाहे मुझे हथेली पर सर रख के बात करनी पड़े। जब मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है रवायात के तनाजुर में, अहादीस के तनाजुर में, अलामात के तनाजुर में, कि जो शख्स इस वक्त सैयद हाशमी बनकर नजदियों के खिलाफ जिहाद करने जा रहा है, उस सो कॉल्ड जुल्म की बदौलत जो उसके एक पायलट पे किया गया था, ये वही शख्स है जिसके बारे में 99% मैं आपसे कह सकता हूँ आइमा फरमाते हैं कि सुफियानी है, यह हाशमी नहीं है। जब मैं देख रहा हूँ कि इसके क़याम की बशारत जिस शेख नाज़िम हक्कानी ने सिलसिले नक्शबंदिया से दी थी कि आप क़याम करें, आप ही अहले बैत के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे कुरे अर्ज़ पर, उसी शेख नाज़िम हक्कानी ने शेखुल इस्लाम को भी बशारतें दी हैं, उसकी भी बैत वसूल की है। उसी शेख नाज़िम हक्कानी ने परवेज़ मुशर्रफ से भी कहा है कि आपकी नाक की बनावट बताती है कि आप सैयद हैं और इमाम हसन मुश्तबा की औलाद हैं और आप यावरान इमाम ज़माना में से होंगे और जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर आप दिल्ली आपके हाथों फतह होगा। सब वीडियोस मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। फिर अगर हम आपको वार्न करना चाहते हैं कि भाई खुदा के लिए इस तरह से किसी के साथ नथी मत हो जाओ कि तुम शेखुल इस्लाम के साथ आ गए और वो तुम्हें उसके परचम तले ले जाए। सिनेरियो ये है इस वक्त, एक ऐसा शख्स उठने वाला है जो दाइशियों को, अन्नुसरा को, अलकायदा को गाजर मूली की तरह काटेगा और शिया ताली बजाएंगे, खुश होंगे, उसके हक में नारे लगाएंगे। क्यों काट रहा है वो गाजर मूली की तरह से? वो इसलिए काट रहा है कि वो सलफियों को, वहाबियों को अपने बाप दादा की जागीर का गासिब समझता है, क्योंकि वहाबियों ने इसके दादा हुसैन बिन अली को शरीफ मक्का के टाइटल से निकाल कर भगा दिया था और ख़ुद खादमुल हरमैन शरीफैन बन गए थे। ये कहते हैं कि हरमैन हमारे बाप की जागीर है, वो दुश्मन अगर है वहाबियों का इस बुनियाद पर है, लेकिन जितना दुश्मन वो वहाबियों का है उससे चार गुना ज़्यादा वो शियों का दुश्मन है। रवायात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं, जब आएगा इतना मुनाफिक है पहले एक दो महीने तक शियों को कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ उनको मारेगा सबको और अबका को। लेकिन जब पाँच इलाकों पर मुसल्लत हो जाए और इराक़ में आए तो शिया नौजाद बच्चों को जलते हुए तेल के कड़ाह में फेंकवाएगा, फिर असल शख्सियत उसके सामने आएगी। अगर आइमा ने ये पहले हमें वार्न कर दिया है, बता दिया है, तो हमें उनकी तरफ गौर करना चाहिए, अलामात की तरफ, रवायत की तरफ स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कि ये कहना चाहिए कि नहीं इन चक्करों में नहीं पढ़ो। अब आप समझ लें कि बहुत सारे लोग बेवकूफ़ी में तकरार करते हैं, दिल उनका पाक होता है, सोच उनकी सही होती है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो ये बातें फैला रहे हैं, असल में उनका ख़ास मोटिव है भाई। इस वजह से इशारे में अर्ज़ कर दूं मैं आपसे, ईरान में इस वक्त भी हौजे के अंदर बाज मराज एजाम इस अकीदे के हामिल हैं कि इमाम ज़माना के इनकलाब से पहले कायम होने वाली हर हुकूमत मिन जुमला इनकलाब इस्लामी तागूती हुकूमत है, और जब तक इसको गिरा नहीं दिया जाए इमाम ज़माना ज़हूर नहीं फरमाएंगे। उनके असरात कितने हैं, उनके मुरीदीन कितने हैं, हमें नहीं मालूम। खुलकर अपने ख्यालात बयान नहीं करते, रुकावटें डालते। मैं आपसे बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जितना कुछ जनाब अहमदिनेजाद के ख़िलाफ़ हुआ वो उस शमून पेरिस के वो दस्तूर के तहत और उसके प्लान का हिस्सा था। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो आप सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि काश हमने ये नहीं किया होता, काश हमने ये नहीं किया होता। रूहानी साहब के अपने लिखे हुए टेक्स्ट, उनकी बुक्स, उनके मकाले मैं अगर आपके सामने पेश करूँ ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी अहदाफ थे इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह के, उससे 180 डिग्रीज पे इन लोगों के ख्याल आते हैं, चाहे वो हाशमी रफसंजानी साहब हो, चाहे वो मोहम्मद खातमी हो, चाहे वो हसन रूहानी हो, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर कोई आपसे कहे नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है, हमें दाखिली मामला, वो आपको टोपी पहना रहे। अगर ज़हूर इतना नज़दीक नहीं होता, अब्दुल्ला मर नहीं गया होता, मैं तज़मीन समझता हूँ, कौले मासूम है, इमाम मासूम का वो है फरमान है, तो मुझे बादशाह अब्दुल्ला के मरने की ज़मानत दो, मैं तुम्हें ज़हूर क़ायम की ज़मानत देता हूँ, मेरे लिए ज़मानत काफ़ी है। मैं देख रहा हूँ कि जिन सिनेरियोस का हमने आपसे चार साल पहले तज़्ज़िया तहलील किया था, और जो दोस्त सुनते आ रहे हैं तीन चार साल पहले से हमारी बातें, वो जानते हैं, गवाही देंगे। उस वक्त से हम ये कह रहे थे कि देखो जब ये निकल आएगा ना मैदान में, अगर उस वक्त कोई तुमसे ये बात कहेगा ना, तुम कह दो ये शबी साजी है, सिमुलेशन है, झूठ है, बिला वजह नथी कर रहे हो उसको ज़हूर के मामलात से। इसलिए हम पहले से कह रहे हैं, तुम्हें पहले से कह रहे हैं, कोई अब से एक दो महीने पहले सोच भी सकता था कि उर्दून का बादशाह इस तरह से मैदान में आएगा कि अब तक 60-70 के करीब वो एयर स्ट्राइक्स कर चुका है शाम में और इराक में दाइश के ठिकानों पर। अब अगर ये पांच इलाकों के काबिज़ हो जाता है, दो निशानियां क्लूज दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपसे नहीं कहता कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप यकीन कर लें, लेकिन दो क्लूज दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जिन लोगों से आप बातें सुनते हैं ना उनके रोब में भी तो होते हैं, ले कोई मसला नहीं, रहें आप रोब में, लेकिन दो निशानियां जहन में रखिए। अब्दुल्ला का मरना उस सूरत में आपके लिए ज़मानत कन्फर्म हो जाएगी जब सालों की हुकूमत महीनों और दिनों की रह जाए, सही है ना, मर गया ना वो, लेकिन अगर ये स्टेबल हो जाती है हुकूमत दोबारा और कई साल चल जाती है, तब आप ज़रूर मुझसे कह सकते हैं आप गलत समझ रहे थे, आपको शदीद गलत फहमी हुई थी, ये वो अब्दुल्ला नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये डाउनफॉल हो जाता है इनका, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि इमाम मासूम की जो ज़मानत है वो दुरुस्त है, एक बात। दूसरी बात ये, इसके बारे में जितनी निशानियाँ हैं ना, तकरीबन 90% पूरी उतरती हैं इसके ऊपर सुफियानी होने के लिए,
ये बात बारह बारह जिक्र हम कर चुके हैं माजी में, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन फ़िलहाल अगर आप अभी भी वो हैं शक में मुब्तला हैं कि ये वाकई सुफियानी है या नहीं है, क्योंकि सुफियानी की का खुरूज तो यकीनी निशानियों में से है ना, तो आप आइम्मा ने फरमाया है अच्छा तो फिर तुम ऐसा करना, अगर तुम्हें शक हो कि जो अब्दुल्ला नाम का शख्स निकल रहा है, दो नाम आए ना इसके, उस्मान बिन अम्बसा और अब्दुल्ला, दोनों नाम आए हैं सुफियानी के रवायात में मौजूद है। इन अलामात पे रवायत पे हमारी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई 28-30 साल पहले से है, कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए। पर अगर ये शख्स या कोई भी शख्स इन पांच इलाकों पर काबिज़ हो जाए तो समझ लेना यही सुफियानी है। कौन से इलाके? उर्दुन, उर्दुन ऑलरेडी इसके पास है अगर हमारी बात आप मान लें या एहतमाल दें उसको। बाकी चार इलाके कौन से? शाम के इलाके, होम्स, हलब, दमिश्क, कंसरीन, चार इलाके शाम के और एक उर्दुन। इस पर अगर इसके तसल्लुत हो जाए समझ लो जो काबिज है वही सुफियानी है और वही इमाम ज़माने का दुश्मन है अल्टीमेटली, जो अल्टीमेटली इमाम ज़माने के हाथों कत्ल होगा। यानी अब आप इस तरह से तो देख सकते हैं ना मामलात को, ये दो चीज़ें निशानियाँ पूरी हो जाती हैं, इधर से डाउनफॉल और उधर से उसका तसल्लुत पाँच इलाकों पर। फिर तो किसी को ये कहने का हक़ नहीं है ना कि शबी साजी है, सिमुलेशन है और फ्रॉड है और झूठ है और ज़यीफ़ है और जाली है हदीस। अगर फिर भी कोई कहेगा इसका मतलब है आपने कसम खा रखी है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, फ़लाँ आयतुल्लाह ने ये फरमाया, फ़लाँ आयतुल्लाह इस इनकलाब इस्लामी के ही दुश्मन हुए, तो इंतज़ार कर रहे हो कि इसका डाउनफॉल हो ताकि हम इसको संभालें। फिर ऐसी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। रहबर मौज़म बारह और बारह लोगों को बशारत बख्श नवीद दे चुके हैं कि ये नौजवान अपने आँखों से ये देखेंगे, ये नौजवान इस्तकबार को दो जानू होता हुआ देखेंगे, ये नया जो सिस्टम आने वाला है दुनिया में इसको खुद अपने आँखों से देखेंगे, वो सब बता चुके हैं वो। हम और आप, हमें चाहिए कि हम होश में आ जाएँ और उसमें आ जाएँ। सिर्फ एक आपसे दरख्वास्त हाथ जोड़ कर आपसे कर रहा हूँ, उससे पहले अपने आप से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने अंदर इसकी शदीद कमी है। इसके ऊपर आप तवज्जो दे दिए। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि फिर अगर ऐसा है, इम्कान भी है अगर इस बात का, 50% हो, 30% हो, 60% हो, 10% हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वो बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं और फिर बात अपनी ख़त्म करता हूं। क्या आपने वो रवायत सुनी है हदीस कि जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम की पहचान के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरा है? सुना है ना? और जाहिलियत के बारे में जब आइमा मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा गया इसका मतलब क्या है, तो आपने क्या फरमाया? यानी शिर्क की मौत मरा। अब आप मुझे ये बताइए कि शनाख्त से मुराद क्या है, पहचान से मुराद क्या है, मारिफत से मुराद क्या है? हुज्जत इब्न हसन इमाम ज़माना का नाम ये है, आपकी वालदा मोहतरमा का नाम ये था, आपके वालिद मोहतरम का नाम ये था, आप ज़रूर फरमाएंगे तो दुनिया जो है वो अदलो कैसे इस तरह पुर हो जाएगी जैसे वो जुल्मो जोर से भरी हुई थी। हो गई कम्प्लीट शनाख्त, निकल आए हम शिर्क के दायरे से बाहर, काफ़ी है ये हमारे लिए? मैं नहीं समझता, काफ़ी मैं नहीं समझता। फिर क्या करना चाहिए हमें? हमें इमाम असर को उस तरह से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए जैसे खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम ने हुज्जत खुदा की पहचान करवाई है हमसे। मुस्तनद तरीन पहचान, पहचान नामा कह लें उसे आप, शनाख्त नामा उसे आप कह लें, वो क्या है? इमाम हादी अलैहिस्सलाम से जो मरबूत, मुकद्दस कलमात, नूरानी कलमात हैं जिन्हें हम कहते हैं ज़ियारत जामे कबीरा। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैतुन नबुव्वा है, अहले बैतुन नबी नहीं है। वह मौज़े अर रिसाला अंतुमुल मुख्तलफुल मलाइका, आप फरिश्तों के आने जाने की जगह हैं, वास्ते फैज़ इलाही हैं, हक़ और खल्क के दरमियान वास्ता है फ्यूज़ात का, अगर आप ना रहें तो सब कुछ नाबूद हो जाए, कायनात की नब्ज़ आपके हाथ में है, कहकशाओं की गर्दिश आपके हुक्म से है, बेइज़्निल्लाह। दोस्त मारिफत ये है, कम से कम है, और आपको मालूम है जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसको खुराफात और माली खुलिया और ये सब, पता है उनका थिंक टैंक क्या कहता है? ज़रूरत नहीं पढ़ने की और दिल आपका ख़राब होगा, और सिर्फ इशारतन आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो बेशक आप कन्फर्म कर लिए जाके, डॉक्टर सरूश जो इनके थिंक टैंक का सबसे आगे का आदमी है, मोहसिन कदीवर की तरह और साजगारा की तरह से और दीगर अल्लम गल्लम लोगों की तरह से, डॉक्टर सरूश कभी अपने आप को शिया कहता है, कभी अपने आप को सुन्नी कहता है, कभी अपने आप को मोतज़िला कहता है, आजकल नहीं पता क्या कह रहा है, पता है वो क्या कहता है? कहता है ज़ियारत जामे कबीरा जो है ना झूठ का पलंदा है, गाली शियों का मरामनामा है, आइमा अलैहिस्सलाम में ऐसी कोई नूरानियत, ऐसी कोई क़दासत कुछ नहीं थी, बस एक अच्छे लोग थे, ज़हीन लोग थे, अच्छे नेक इंसान थे और बस। हम ऐसे किसी नेक इंसान और मुसलह जान का इंतज़ार नहीं कर रहे, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि विलायत तकवीनी के हामिल हैं, और हम चाहते हैं कि बैत के ज़रिए विलायत तशरीह ही उनको मिल जाए। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनके साथी हमेशा से, जिनके शागिर्द हमेशा से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मानिंद मोमिनीन की और मुसलमानों की खिदमत करते रहें, उनकी मदद करते रहें, उनको मुश्किल से नजात देते रहें। सूरह कहफ में जो वाक़ हज़रत मूसा और खिज़र का पढ़ लीजिएगा, वो फरिश्ताद हैं, हुज्जत खुदा हैं। हम ऐसे इमाम ज़माना की मुंतज़िर हैं, ऐसे कि नहीं कि जब वो तशरीफ़ लाएँ तो उनको हम पहले बताना शुरू करें, आगा ये आईफोन है और ये ब्लैकबेरी है, ये खेल तमाशे हैं सारे, आप तशरीफ़ लाएंगे, इल्म जहाँ भी होगा वो दो सिता दो यूनिट समझा जाएगा, उससे बढ़ाकर 27 तक ले जाएंगे आप, कायनात आपके हाथ में बेइज़्निल्लाह, मारिफत बढ़ाइए, नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो है ना गिद्ध उचक लेंगे आपको फिज़ा में, यूँ गुमराह हो जाएंगे आप, मुशरिक हो जाएंगे आप, हलाक हो जाएंगे आप। क्या अक्सरियत नजात पा जाएगी? नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम में चलेंगे ना, शायर आम पे चलेंगे ना, तो समझिए गुमराही आपकी यकीनी है। अब अपने आप को किसी तरह से, पहली बात तो तदब्बुर तफक्कुर कीजिए, खुदा से मांगिए, बैनतुलैन का वक्त ख़ास तौर पे अपने लिए कोशिश कीजिए कि वो हाथ से ना जाने पाए किसी भी कीमत पर। फजर से 5-7 मिनट से पहले से लेकर फजर के 5-7 मिनट बाद का वक्त वुज़ू कीजिए, मुसल्ले पे आइए, बारे लाहा हम आ गए, अहले बैत अलैहिस्सलाम या इमाम ज़माना मैं आ गया हूँ ताकि आप मेरी तरबियत फरमाएं, ताकि आप मुझे नूरानियत अता करें। 10 मिनट गुजार लेंगे आप, नमाज़ पढ़ सकते हैं, पढ़ें कुरान पढ़ सकते हैं, पढ़ें दुआ पढ़ सकते हैं, पढ़ें नौहा पढ़ सकते हैं, पढ़ें कुछ तवस्सुल या मुनाजात दुआ की कोई कैफियत बनाएं, 10 मिनट गुजार लेंगे, यकीनी कहा है बुज़ुर्गों ने उरफा ने कि बाकी आने वाला जो दिन है ना वो आपका ज़मानत शुदा है, आपको गुमराहियों से और अंधेरों से बचा लिया जाएगा, रोशनी दे दी जाएगी, जो मिलता है वो उसी शहर में मिलता है। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, या वरान इमाम ज़माने के बारे में कहा गया है आबिद शब जिंदेदार हैं और दिन के वक्त अल्लाह के शेर हैं, दिन के वक्त अल्लाह का शेर बनना चाहते हैं तो कम अज़ कम आबिद शब जिंदेदार होने का मज़ा तो चखें हमारा। फिर खुदा जितनी तौफीक दे, मुस्तहबात में तो ये कि जितना शौक़ बढ़ेगा उतना, लेकिन अगर मज़ा लग गया आपको इसका, इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों को लगा हुआ है, वो जानते हैं इस बात को कि जब ये तौफीक सलब हो जाती है हाथ से तो फिर बड़ी कोफ्त होती है, सोचते हैं पूरा दिन में कौन सी ऐसी हरकत की है, कौन सी ऐसी हिमाकत की है कि ये तौफीक सलब हो गई हमारे हाथ से, चली गई, सोते रह गए हम, नमाज भी तकरीबन ख़ज़ा होने वाली है, फिर ज़्यादा एहतियात करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं ये वक्त 10 मिनट जो है ये 24 घंटे पे भारी है। आइए 1-to-1, मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ, मैं आपको अपने किसी परचम तले तो नहीं बुला रहा, मैं आपको अपना मुरीद तो नहीं बनाना चाह रहा, ना मैं अपने किसी पीर का मुरीद आपको बनाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप भी इस तरह से मुंसलिक हो जाएं इमाम ज़माना से जैसे मैं होना चाहता हूँ। इमाम ज़माना गायब है ना, गैर हाजिर तो नहीं है ना, सेल फ़ोन उठाते हैं बात करते हैं किसी से, कितने यकीन से बात करते हैं कि जो बात कर रहे हैं वो पहुँच रही है वहाँ तक, 100% यकीन होता है ना आपको, फ़र्क सिर्फ यही है कि फ़ोन उठा लीजिए, तसव्वुर कीजिए कि फ़ोन उठाया आपने, इमाम असर से बात कीजिए, जवाब जो आए वो दिल के कानों से सुन लीजिए जब तक ज़हूर नहीं हो जाता, और खुदा तौफीक दे तो शायद वैसे भी सुन सकें, लेकिन बात करें तो सही, पता तो चले कि ईमान पे गैब है आपको, कहानी नहीं समझते इसको, खुराफात नहीं समझते इसको, माली खुलिया नहीं समझते इसको, ट्रायल एंड एरर की बेसिस पे नहीं देखना चाहते आप, ईमान रखते हैं आप। बात कीजिए, तवस्सुल कीजिए, और ये कोई नई बात नहीं, अजीब बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए अपने घर में, अपने वालिद से, अपनी वालदा से पूछिए कि ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मुश्किलात पेश आई हैं और उन्होंने बीबी सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल किया, मसला हल हुआ। पूछिए उनसे, सीखिए, हम और आप क्यों नहीं करते, हमें भी करना चाहिए। जो नहीं करते वो महरूम है, जो करेंगे, जब भी कोई मुश्किल आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तन्हाई में दो जुमले बयान कर दिए इस तरह से जैसे वो सुन रहे हैं। क्यों हमसे ये बयान किया गया है? आयतुल्लाह मरहूम बेइज्जत फरमाते हैं कि इमाम ज़माना कौन है? उज़ुनुल्लाह है, खुदा के कान, ऐनुल्लाह नाज़िरा हैं, खुदा की देखने वाली आँखें। यानी हमें यकीन होना चाहिए कि इस वक्त ये मंज़र इमाम असर के सामने है, ये गुफ्तगू इमाम असर के सामने है, आपके हुजूर में, आपके महजर में। मैं बल्कि इससे बढ़कर हमें यकीन होना चाहिए, आपका यहाँ सब जमा होना, इस रास्ते पे अभी तक कायम रहना, इस तरफ मुतवज्जे रहना, सब उनका लुत्फ़ है, उनका करम है, उनकी दुआओं का असर है। हमें दम नहीं है कि हम नेकियाँ कर सकें, ना हमें इतना दम है कि अपनी नेकियों को खुदा की बारगाह में कबूल करवा सकें जब तक कि उनकी दुआएँ हमारे साथ शामिल ना हों। बारेला तुझे वास्ता है मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, कि जिस हौज़े कौसर तक इतने तवील इंतज़ार के बाद तूने हमें पहुंचा दिया है, नज़दीक कर दिया है, वहाँ से हमें तशना लब प्यासा वापस ना पलटाना, हमें इमाम असर के मुंतज़िरों में, मुबशरों में और आपके साथियों में से करार देना, हमें आपकी रकाब में शहादत से सरफराज फरमाना। बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात।